तत्व जिज्ञासु सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता के आत्म संयम योग नामक छठे अध्याय के 37वें श्लोक से लेकर 45वें श्लोक पर्यंत अर्जुन के द्वारा योग भ्रष्ट की गति के विषय में दिया गया प्रश्न और भगवान के द्वारा दिया गया जो उत्तर है उसका विचार कर रहे हैं। 37वें श्लोक में सर्वप्रथम अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न करते हुए पूछा कि अयति ही श्रद्धयो पेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। कहते हैं कि अयति ही, यानी जिसका प्रयत्न पूरा नहीं हो सका है उसको कहेंगे अयति ही, साधना पूरी नहीं हुई, बीच में ही शरीर छूट गया। ठीक है, लेकिन उसके अंदर कौन कौन से लक्षण है तो कहा श्रद्धयोपेतः, श्रद्धया उपेतः श्रद्धयोपेतः, यानी श्रद्धा से युक्त जो है, श्रद्धा से ही तो वो साधन कर रहा था। अर्जुन ने यहां श्रद्धा से उपेत, श्रद्धा से युक्त कहा, किंतु यहां केवल श्रद्धावान ही नहीं लेना, और वे जो उपनिषदों में साधन बताए गए हैं वो भी साथ साथ में ग्रहण कर लेना है। श्रद्धा शब्द तो यहां उपलक्षण है, जैसे लोक में कहा जाए राजा सौ गच्छति, राजा जा रहे हैं, ऐसा जब शब्द प्रयोग हम करते हैं राजा जा रहे हैं, तो यहां राजा से केवल राजा ही ग्रहण नहीं होगा, किंतु जिसके बिना राजा का जाना संभव नहीं है, जैसे कि उनके मंत्री है, अनुचर है, सेना है, घोड़े है, हाथी है, ये सब ग्रहण कर लिया जाएगा। राजा जा रहे यानी कि पूरा सैन्य उनके साथ है, किंतु जब हम बोलते हैं तो ये नहीं कहते है, राजा जा रहे, सैनिक जा रहे, सेनापति जा रहे, मंत्री जा रहे, घोड़े जा रहे, इतना नहीं बोलते। वो क्या बोलते है? राजा जा रहे। जिसके बिना राजा का जाना संभव नहीं है वो सब ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार श्रद्धयोपेता, योग भ्रष्ट का विशेषण अर्जुन ने कहा श्रद्धयोपेता, तो श्रद्धा को आप उपलक्षण मानिए तो श्रद्धा के साथ साथ जो और भी साधन है, जैसे उपनिषदों में कहा शांतो दांत उपरति तितिक्षु श्रद्धा समाहितो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्येत, ये जो भगवती श्रुति कह रही है कि शांत दांत उपरीति तितिक्षु श्रद्धा, ये सब साथ में होते हैं, साथ में ग्रहण कर लिए जाते हैं। आत्मनि एव आत्मानं पश्येत, अपने अंदर ही अपने रूप में ही अपने आत्मस्वरूप से ही ब्रह्म का दर्शन तभी हो सकता है जब ये शांतादि साधन हो। अर्थात कि भगवान भाष्यकार और बादरायण जी ने जैसे कि ब्रह्म सूत्र के प्रथम सूत्र में जैसे कि निर्धारण किया है ब्रह्म जिज्ञासु के लक्षण, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र में भगवान बादरायण ने अथ शब्द का जो प्रयोग है वो आनंतर्य दृष्टि से किया है। भगवान भाष्यकार इस बात को भली भांति जानते हैं, इसलिए उन्होंने उस सूत्र का भाष्य करते समय उहापोह पूर्वक अथ शब्द का यद्यपि प्रसिद्ध अर्थ मंगलवाची है, किंतु उस मंगलवाची अर्थ का भी अपलाप किए बिना साथ साथ में कहा कि मुख्य रूप से यहां अथ शब्द का अर्थ आनंतर्य है, मंगलवाची हो जाए कोई दिक्कत नहीं, किसका आनंतर्य, ब्रह्म जिज्ञासु को किस साधन विशेष से युक्त होना चाहिए जिससे कि वो उनके अंतकरण में ब्रह्म विषयिणी जिज्ञासा हो, तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि साधन चतुष्टय, चार साधन से जो युक्त है उसके अंतकरण में ब्रह्म की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। कौन से वो चार साधन है, तो सबसे पहला है विवेक, नित्य और अनित्य वस्तु को अलग अलग परखने की जो बुद्धि की वृत्ति है उसको विवेक कहते हैं। अब जब ये पता चला कि नित्य और अनित्य वस्तु को आपने पृथक करके कर दिया, तो फिर ग्रहण नित्य का करेंगे कि अनित्य का करेंगे, अनित्य का त्याग करेंगे और नित्य का ग्रहण, ये समग्र दृश्यमान संसार, तो संसार का त्याग करना ही वैराग्य है, संन्यास है, इसलिए विवेक के बाद वैराग्य, वैराग्य विवेक के बिना हो ही नहीं सकता है, और जब वैराग्य हो और शरीर अभी जीवित है, शरीर के लिए सुविधाओं का त्याग किया है, तो उसके अभाव में जो मन और इंद्रियों को जो कठिनाई होगी उसको सहन करने का सामर्थ्य है शमदमादि उपरति, शमदमादि षट संपत्ति, और शमदमादि षट संपत्ति को तभी आप स्थायी रूप से रख सकते हैं कि जब अंतकरण के अंदर दृढ़ तीव्रतर मुमुक्षु भाव हो, इसलिए चतुर्थ साधन है मुमुक्षुत्व। मोक्षो में भूयाद इति इच्छा, उसको कहते हैं मुमुक्षा। ये दृढ़तर होने पर ये चार साधन लेना है। अब यहां जैसे अर्जुन ने कहा श्रद्धयोपेत, इससे केवल ये मत दीजिए कि श्रद्धा ही मात्र साधन है, श्रद्धा से अभिप्राय ये साधन चतुष्टय संपन्न है, यहां तक लेना है। तो अर्जुन के कहने का जो है स्वरूप बनेगा कि भगवान जो अयति यानी जिसका प्रयत्न भी पूरा नहीं हुआ है और चार साधन से संपन्न है, विवेकादि साधन से संपन्न है, संन्यास ग्रहण कर लिया है, वेदांत प्रस्थान्तरी का वो श्रवणादि कर रहा है और आयुष अल्प होने के कारण मृत्यु हो गई और मृत्यु के समय आप लोग जानते हैं कि इंद्रिया जो है व्याकुल हो जाती है मृत्यु के समय, इसलिए उस समय साधन का अनुष्ठान संभव नहीं हो पाता है। इसलिए यद्यपि ये योग में निष्ठ है, अद्यावधि पर्यंत योग में यानी साधन में वो निष्ठ है, किंतु मृत्यु के समय इंद्रियों की व्याकुलता के कारण उनका जो मन है वो योग से चलित हो गया, ये स्वाभाविक है। अल्प प्रयत्न में ऐसा होता है जैसे कोई ड्राइविंग ही कर रहा, यदि उनका अभ्यास परिपक्व नहीं है तो कहीं न कहीं वो टक्कर मार देता, किंतु अभ्यास परिपक्व होने पर टक्कर की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। अब यदि पूर्ण अभ्यास होने पर तो मृत्यु के समय भी मन जो है योग से चलित नहीं होगा, चाहे इंद्रिया व्याकुल हो जाए, और मृत्यु के समय जो मृत्यु का क्रम है वो तो सबका एक ही जैसा है, ऐसा नहीं कि ज्ञानी के लिए कोई मृत्यु के समय भगवान ने विशेष व्यवस्था की है या मूड की शरीर छूटते समय कोई अलग व्यवस्था, ऐसा नहीं है। मृत्यु के समय होता क्या है, क्यों इंद्रिया व्याकुल हो जाती है, मृत्यु के समय जो होने वाली क्रिया है उसका वर्णन हमारे उपनिषदों में कहा गया कि जीवन भर मन परमात्मा में रखा है, स्वाध्याय सत्संग किया है, फिर भी जो है मन ऐसा बलवान है कि उस समय वो विचलित हो ही जाता है अभ्यास के परिपक्व नहीं होने के कारण। मृत्यु होती है तब उपनिषद में कहा कि सबसे पहले वांग मनसी संपद्यते, मन प्राणे प्राणस्तेजसी तेजः परस्याम देवतायाम, ऐसा कहा। जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तब सबसे पहले उसकी वाणी बंद हो जाती है। ये जब कोई परम आयुष का भोग करने के बाद स्वाभाविक रूप से जिसकी मृत्यु होती है उस समय आप ये स्थिति देख सकते हैं कि कोई मुमूर्षु व्यक्ति मृत्यु शैया पर सोया हुआ है, तब सबसे पहले देखो कोई उस समय उसके ज्ञाति बंधु उसकी खबर लेने के लिए आते हैं तो उस समय वो सोया हुआ है तो उसको टटोलते हैं, हस्त स्पर्श करके जब वो उठ जाए तो पूछते हैं मेरे को पहचानते हैं, तो वो बोलता है हाँ वो अमुक अमुक व्यक्ति है, तो वो बोल लेता है कि मैं पहचान रहा हूं, आपको नाम भी बोल देगा उसका। लेकिन जब मृत्यु का प्रथम चरण जब वो चढ़ ले यानी वाणी मन में लीन हो जाए, उसके बाद कोई ज्ञाति बंधु आकर के हड़बड़ा करके पूछे मेरे को पहचानते हो, तो वो बोल नहीं पाएगा उस समय। उस समय वो बोलने का प्रयत्न भी करेगा तब बोल नहीं पाएगा, किंतु चक्षु से वो संकेत अवश्य व्यक्त करता है कि मैं आपको पहचानता हूं लेकिन अब बोल नहीं पाऊंगा। चक्षु से पता चल जाता कि पहचानता है। होता यह है कि उस समय वांग जो है मन में लीन हो गई है, इसलिए गोलक से बोला नहीं जाएगा। और कुछ क्षण के बाद मन जो है वो प्राण में लीन हो जाता है। वांग मन सी संपद्यते मनः प्राणे, मन जो है प्राण में जब लीन हो जाएगा तब प्राण चलते रहेंगे, किंतु उस समय कोई आकर के हबड़ा करके पूछे तो वो मन से भी वो व्यक्त नहीं कर पाएगा, किंतु उसके प्राण जो है श्वसन क्रिया चालू है। और एक समय ऐसा आएगा कि श्वसन क्रिया भी बंद हो जाएगी। प्राण तेजसी, प्राण जो है तेज के अंदर लीन हो जाएगा और प्राणन क्रिया नहीं रहेगी। श्वास उच्छ्वास से आप उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे, किंतु शरीर उसका उष्ण है, इससे ये पता चलता है कि ये अभी जीवित है। देखिए डॉक्टर लोग श्वास क्रिया बंद हो जाने मात्र से उसको मृत घोषित नहीं करेंगे, और भी लक्षण देखते हैं वो। और ये श्रुति के अनुसार शरीर यदि गर्म है ठीक है, श्वास क्रिया न चले तो ये माना जाता है कि अभी ये जीवित है। और जब तेज परस्याम देवतायाम, तेज जो है पर देवता के अंदर यानी आत्मा में लीन हो जाएगा जिससे इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो उस समय शरीर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। उस समय डॉक्टर लोग भी विशेषज्ञ भी कह देंगे कि अब ये जो है मृत है, इसको मृत घोषित कर देते हैं। ये जो प्रक्रिया वाणी का मन में, मन का प्राण में, प्राण का तेज में, ये जो लय क्रम है वो इतना कष्टकारी होता है कि उस समय मुमूर्षु व्यक्ति का ध्यान परमात्मा में योग में नहीं रहता है, महाप्रयत्न करने पर भी चलित हो जाता है। इसलिए साधन चतुष्टय संपन्न होते हुए भी, और अभी कहा अल्प प्रयत्न, प्रयत्न पूरा जीवित अवस्था में ही ब्रह्मज्ञान नहीं हो पाया है, जीवित अवस्था में अभी साधन परायण ही है, इसलिए मृत्यु के समय जो है वो मन जो है योग से चलित होना स्वाभाविक ही है। इसलिए योगाचलित मानस ये कहा। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि इन तीनों विशेषणों से युक्त जो साधक है वो योग संसिद्धिम अप्राप्य। अर्जुन कहते हैं योग की जो संसिद्धि है उसको तो उन्होंने प्राप्त की नहीं। योग संसिद्धिम शब्द का प्रयोग है, योग संसिद्धिम योगस्य सिद्धि, योग सिद्धि, उसके आगे सम उपसर्ग लगाया तो सम्यक प्रकार से सिद्धि, अर्थात ऐसी सम्यक सिद्धि कि उसके बाद और कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, ऐसी संसिद्धि है जो योग की संसिद्धि है वो तत्व ज्ञान। तो योग संसिद्धि का अर्थ हो गया तत्व ज्ञान। अब अर्जुन ने कहा कि योग संसिद्धिम अप्राप्य यानी कि तत्व ज्ञान, या ये कहे कि तत्व ज्ञान के निमित्त तत्व ज्ञान होने पर क्या होता है, अज्ञान और अज्ञान के कार्य की निवृत्ति। ये योग संसिद्धि लीजिए उसको, अज्ञान और अज्ञान के कार्यों की निवृत्ति, वो उन्होंने ये प्राप्त नहीं किए है योग संसिद्धि अपुनरावृत्ति। योग संसिद्धि का और अर्थ ले लीजिए, अपुनरावृत्ति यानी पुनरावृत्ति का अभाव, जन्म और मृत्यु का अभाव उसका भी होगा नहीं क्योंकि तत्वज्ञान नहीं हुआ। तो ये जो तत्वज्ञान या तत्वज्ञान निमित्त, तत्वज्ञान होने पर अज्ञान और अज्ञान के कार्य की निवृत्ति यानी कि पुनरावृत्ति का अभाव रूप जो योग संसिद्धि है उसको अप्राप्य यानी उसको प्राप्त किए बिना वो मृत हो गया। और तत्वज्ञ अवस्था में ही जिसका शरीर छूट गया, देखो अप्राप्य मृत हो गया। तो कहते हैं कृष्ण काम गतिम गच्छति, कहते हैं हे कृष्ण वो जो ये योग भ्रष्ट जो है साधक है उसकी काम गतिम कौन सी गति वो गच्छति यानी प्राप्त करेगा। यानी अर्जुन का अभिप्राय है कि उसकी सुगति होगी या दुर्गति होगी। देखो ये प्रश्न अब अर्जुन ने इस श्लोक में भगवान के लिए संबोधन किया कृष्ण। देखिए गीता में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों के लिए भिन्न भिन्न कई एक विशेषणों का प्रयोग है। भगवान के लिए भी इस गीता में अर्जुन ने अलग अलग कई एक नाम का प्रयोग किया है। अब ये जो यहां पर जो कृष्ण शब्द का जो प्रयोग करने का अर्जुन का अभिप्राय भी बड़ा ही सार्थक और प्रसंग अनुरूप है। हमारे यहां अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के जो बात चल रही है उसके अनुरूप ही संबोधन का अभिप्राय हमारे व्याख्याकारों ने बहुत ही अच्छी प्रकार से निकाला। जैसे कि यहीं पर ही अर्जुन ने भगवान के लिए कृष्ण शब्द का प्रयोग किया तो अर्जुन का क्या संकेत है, देखो किसको कृष्ण कहते हैं। देखो कृष्ण शब्द का अर्थ होता है कृषति इति कृष्ण, कृषति कृषति इति कृष्ण। देखो कृषति का अर्थ होता है जो उखाड़ दे, जला दे, समाप्त कर दे, उसको कहते हैं कृष्ण। कृषति कर्षण कर दे, किंतु किसका तो पापान कृषति ऐसा ले लो, पापों को जो उखाड़ दे, समाप्त कर दे, जो पापादि का जो निवारण कर दे, पापादि दोष कृषति पापान निवारयति इति कृष्ण, पापों का जो निवारण कर दे। तो पाप क्या है, संशय, संशय क्या है, दोष है। पाप का अर्थ दोष ले लीजिए, संशय भी दोष, संशय की निवृत्ति होनी चाहिए, जो प्रश्न शंका है उसकी निवृत्ति भी होनी चाहिए। इसलिए अर्जुन जो प्रश्न करते हैं तो भगवान उसका भली भांति उत्तर देते हैं। इसलिए कहा कि भगवान आप तो पापों को उखाड़ने वाले हैं, इसलिए मेरे मन में भी ये जो संशय है, शंका है, उसको आप उखाड़ दीजिए। कृष्ण शब्द का और भी अर्थ है, जैसे कहा कि आकर्षति इति कृष्ण, क्या कहेंगे? आकर्षति, आकर्षति पुरुषार्थान इति कृष्ण। जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ या आकर्षति पुरुषार्थान प्रापयति इति कृष्ण, पुरुषार्थ को जो प्राप्त कराने में कारण उसको कृष्ण कहेंगे। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ यद्यपि चार है, कितने हैं? चार पुरुषार्थ है जो मनुष्य के लिए प्राप्त करने योग्य, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा, वेदों में कहा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये पुरुषार्थ इसलिए कहते हैं, पुरुष ही अर्थति प्रार्थते इति पुरुषार्थ, जो पुरुष के लिए प्रयोजनवद हो, पुरुष के लिए अवश्य प्राप्त करने योग्य हो, उसको कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुषस्यार्थ पुरुषार्थ, पुरुष के लिए जो प्रयोजनवद है, अति आवश्यक है, जिसके बिना पुरुष को नहीं चलता, उसको कहते हैं पुरुषार्थ। इन चारों पुरुषार्थों में जो मोक्ष है उसको परम पुरुषार्थ माना है। वो इसलिए कि प्रथम तीन पुरुषार्थ तो सामान्य पुरुषार्थ है, किंतु मोक्ष परम पुरुषार्थ है। इसलिए कि धर्मादि तीन पुरुषार्थ प्राप्त कर लिया लेकिन वो क्षीण हो जाते हैं, उसका नाश हो जाता है, फिर से प्राप्त करना पड़ता है। किंतु मोक्ष रूपी जो पुरुषार्थ है वो एक बार प्राप्त हो गया, फिर पुनः उसको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उपनिषदों में कहा न स पुनरावर्तते, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। और मोक्ष से यहां अभिप्राय निर्विशेष मोक्ष, भगवान शंकराचार्य जी का जो मोक्ष है वो निर्विशेष मोक्ष है, वेदांत का निर्विशेष मोक्ष है, वो है पुरुषार्थ। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में परम पुरुषार्थ को जो प्राप्त कराते हैं उसको कहते हैं कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का लक्षण बिल्कुल यहां घट रहा है, अर्जुन को ये जो तत्वज्ञान का उपदेश दिया उससे जो है अर्जुन अपुनरावृत्ति रूप मोक्ष को प्राप्त हो गए। इसलिए कृष्ण शब्द का प्रयोग करके अर्जुन ने भगवान को यह संकेत दिया कि मैं भी इस प्रकार का जो है पुरुषार्थ को प्राप्त करूं और आगे बढ़ूं, इसलिए मेरे मन में ये जो शंका है उसका आप उच्छेद कर दीजिए। कि काम गतिम कृष्ण गच्छति, भगवान वो योग भ्रष्ट की कौन सी गति होगी, सुगति या दुर्गति? क्यों अर्जुन को इस प्रकार का प्रश्न हुआ, सुगति या दुर्गति विषयक? कारण तो होना चाहिए, सुगति का भी कारण विद्यमान हो तो सुगति विषयक जो है पक्ष होगा, और दुर्गति का कारण होने पर ही दुर्गति विषयक पक्ष होगा। अर्जुन ने दो पक्ष किए हैं, ये सद्गति या दुर्गति, तो दोनों पक्ष का कारण ये जो है युग भ्रष्ट के अंदर अर्जुन को दिख रहा है, सुगति का कारण भी दिख रहा है और दुर्गति का कारण भी अर्जुन को दिख रहा है। देखो कर्म का तो परित्याग कर दिया है इन्होंने, अर्जुन ने, अर्जुन के मन में युग भ्रष्ट का जो स्वरूप है वो ये है कि जिन्होंने कर्म का परित्याग कर दिया है, संन्यास धारण करके जो श्रवणादि साधन कर रहा है उतने आगे तक जो पहुंच चुका है, तो कर्म का परित्याग कर दिया है। और शास्त्र में भी कल कहा था आपको कि सद्गति के लिए क्या चाहिए, सत्कर्म चाहिए, उपासना चाहिए। तो ये तो उन्होंने त्याग दिया है, उस दृष्टि से उन्होंने की ही नहीं उपासना और कर्म, तो कर्म का परित्याग है और ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए मोक्ष संभव नहीं है। और शास्त्रोक्त जो मोक्ष साधन का उन्होंने अनुष्ठान किया है, देखिए कर्म का परित्याग है, इसलिए अर्जुन के मन में यह है कि कर्म नहीं किया है, कर्म को छोड़ दिया है, इसलिए दुर्गति का कारण यह विद्यमान है। अच्छा ठीक है, सुगति का कारण क्या? तो यही देखो, उन्होंने कर्म का त्याग किया और संन्यास ग्रहण किया, वेदांत का श्रवण मनन इत्यादि जो साधन कर रहा है वो क्या है? शास्त्रोक्त नहीं है। संन्यास है तो वो भी शास्त्रोक्त है, कर्मानुष्ठान भी क्या है? शास्त्रोक्त है। ठीक है, शास्त्रोक्त कर्म का अनुष्ठान उन्होंने त्याग दिया, इसलिए दुर्गति की शंका हो रही है, किंतु उन्होंने जो संन्यास किया है, वेदांत का श्रवण कर रहा है, वो किसने बताया? शास्त्र ने नहीं बताया, शास्त्र ही तो कह रहा है संन्यास्य श्रवणं कुर्यात्। संन्यास का विधान शास्त्रोक्त है, तो उन्होंने शास्त्रोक्त जो पद्धति उसका ही तो उन्होंने अनुष्ठान किया, इसलिए शास्त्र में कहा गया जो मोक्ष का साधन संन्यास आदि वो भी उन्होंने किया। और दुर्गति तो तब होती जब उन्होंने कोई शास्त्र गर्हित कोई कर्म किया होता, किंतु जो संन्यास ग्रहण करने के पश्चात जो वेदांत का श्रवणादि साधन में लगा हुआ है वो तो सुबह उठने से लेकर जब शयन पर्यंत और मृत्यु पर्यंत, हमारे यहां शास्त्रों में कहा कि आसुप्ते अमृतम कालम नयेत वेदांत चिंतया। मनुष्य को चाहिए कि वो आसुप्ते दिन भर जब तक सो न जाए, क्योंकि निद्रा अवस्था में तो ये होता नहीं है, इसलिए जब तक वो सो न जाए दिन में, दिन का अंत जो है वो सोने से होता, तो सो न जाए और मृत्यु न हो जाए तब तक जो है जो काल है वो वेदांत का चिंतन करते करते ही बिताए, तो ये सन्यासी के लिए संभव, तो ये उन्होंने किया। इसलिए शास्त्र गर्हित कर्म करने का इसके पास समय ही नहीं है, कब करे? पूरे समय तो वेदांत का चिंतन कर रहा, तो शास्त्र गर्हित यानी शास्त्र निंदित कर्म तो इसकी झोली में बिल्कुल नहीं है। इसलिए सुगति का भी कारण विद्यमान है और कर्म का त्याग, क्योंकि जैसे श्रुति कहते यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात, जीवन रहे तब तक नित्य कर्म करे, इन्होंने त्याग कर दिया। तो अर्जुन को यह लगा कि ये दोनों का कारण इसके अंदर विद्यमान है, सुगति का और दुर्गति का। तो ये प्रथम श्लोक में अर्जुन ने इस प्रकार की शंका व्यक्त की। अब अर्जुन ने तो अपनी शंका का स्वरूप तीन श्लोक में बताया, अब दूसरे श्लोक में जो है संशय का जो बीज है उसका विवरण अर्जुन कर रहे हैं। देखो 38वें श्लोक का हम लोग उच्चारण करते हैं, आप लोग भी पीछे से बोलियो। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमेव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। संशय के बीज का अर्जुन यहां विवरण विस्तार से बता रहे हैं। कहते हैं कच्चित जो है वो अभिलाषा पूर्वक प्रश्न के लिए उन्होंने शब्द प्रयोग किया, कच्चिन न उभय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मण पथि। अब देखो वाक्य में आपको श्लोक बता रहे, अर्जुन कहते हैं कि हे महाबाहो, भगवान के लिए संबोधन है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपनी ओर अभिमुख करने के लिए ये संबोधन करते हैं। देखो जब कोई बात जब लंबी चलती है ना, तब जो है ध्यान बट जाता है, स्वाभाविक है। हम लोग एक घंटा प्रवचन सुनते हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक घंटा हमारा ध्यान उसमें रहा, ध्यानांतर हो जाता। तो ये बात लंबी चलती है तब जो है ध्यान बटना स्वाभाविक है। इसलिए अर्जुन को लगा कि भगवान जो है कहीं हमारी बात को अनसुना न कर दे, इसलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के लिए महाबाहो शब्द का संबोधन किया कि हे महाबाहो, ब्रह्मण पथि विमूढ़ और अप्रतिष्ठ उभय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति न वा। प्रश्नविद का विवरण है, कहा कि हे महाबाहो, हे भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मण पथि ब्रह्मण पथि विमूढ़, ब्रह्म के पथ से जो विमूढ़ है, यानी ब्रह्म ज्ञान जिसको अभी नहीं हुआ, ये योग भ्रष्ट का विशेषण है। ब्रह्मण पथि विमूढ़ यानी ब्रह्म की प्राप्ति का जो मार्ग है, ब्रह्मण पथि पथि का नहीं, पथ यानी मार्ग, ब्रह्म की प्राप्ति का जो मार्ग है वो मार्ग में ही यानी बीच में ही जिसका शरीर छूट गया, गंतव्य तक नहीं पहुंच पाया। गंतव्य है ब्रह्म भाव की प्राप्ति, ब्रह्मानुभव, और मार्ग है आदव निष्काम कर्म निष्ठा तथा अंतकरण शुद्धि तथा शमदमादि साधन पुरस्सर सर्वकर्म संन्यास ततः तत्वज्ञान निष्ठा और तस्या फल त्रिगुणात्मिका विद्या निवृत्ति, ये मार्ग है। तो इस मार्ग में अर्जुन तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील जो है उसके विषय में प्रश्न कर रहे, यानी अभी श्रवणादि साधन ही कर रहा और ब्रह्मानुभव नहीं हुआ। कहा कि ब्रह्म की प्राप्ति का जो मार्ग है उससे विमूढ़ हो गया यानी विचित्त हो गया, यानी बीच में जिसका शरीर छूट गया, अनुत्पन्न ब्रह्मात्मिक साक्षात्कार, ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप जो साक्षात्कार है जिसको अभी नहीं हुआ वो, और अप्रतिष्ठ। अर्जुन इस श्लोक में पुनः योग भ्रष्ट के लिए दो विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं। प्रथम श्लोक में तो कहा जो योगाचलित मानस और अयति, अब पुनः इस श्लोक में वो कहते हैं ब्रह्मण पथि विमूढ़, वो एक ही बात है। पूर्व श्लोक में योगाचलित मानस कहा, अयति कहा, और पुनः यहां कहते हैं ब्रह्मण पथि विमूढ़, ब्रह्म की प्राप्ति का जो मार्ग है ज्ञान, उसको करते करते बीच में जिसका शरीर छूट गया, इसलिए इधर उनको ज्ञान नहीं हुआ और उधर जो है अप्रतिष्ठ है, यानी कि देवयान पितृयान मार्ग के गमन में हेतु जो उपासना और कर्म वो जो है उसमें उनकी प्रतिष्ठा नहीं है, यानी कि इसके साधन नहीं है, इसलिए अप्रतिष्ठा। कर्म फल और उपासना सहित कर्म का फल, इसमें यह अप्रतिष्ठ है, यानी उसका साधन उन्हें किया नहीं है। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि भगवान छिन्ना ब्रमीव उभय विभ्रष्ट, उभय विभ्रष्ट यानी मोक्ष से भी वो भ्रष्ट, मोक्ष को तो प्राप्त नहीं किया है, बीच में ज्ञान होने से पहले ही उसका शरीर छूट गया, और इधर कर्म मृत्यु के पश्चात जो कर्म का फल स्वर्ग और उपासना सहित कर्म का फल देवलोक या पितृलोक को भी वो प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि उसका साधन उन्होंने त्याग दिया। इसलिए उभय विभ्रष्ट हुआ कि नहीं, मोक्ष की भी नहीं होगा उसका, और इधर लोकांतर गमन भी नहीं होगा, इसलिए उभय विभ्रष्ट, दोनों प्रकार से जो विभ्रष्ट जो है उस नश्यति न वा, उसका नाश हो जाता है कि नहीं होता है। और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए अर्जुन ने एक दृष्टांत बताया, छिन्ना भ्रम इव, छिन्न अभ्रम, उसको अलग करेंगे तो होगा, छिन्न अभ्रम इव, छिन्न अभ्रम, अभ्रम कहते हैं बादल को, ठीक है नहीं, बादल को कहते हैं अभ्रम। उभय विभ्रष्ट, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों से विभ्रष्ट, ऐसा ले लीजिए, ठीक है ना। छिन्ना भ्रम, यह देखो दृष्टांत आपको स्पष्ट करता हूं। बारिश की ऋतु जब चलती होती है तो आकाश में बादल बड़े जोर से घिर जाते हैं, तो समझ लो कि दो बादलों का बड़ा समूह है, घनघोर बादल का दो समूह है आकाश में, और उन दोनों बादलों के बीच में जगह है, दोनों जुड़े हुए नहीं है। एक बादल में से बादल का एक हिस्सा अलग हो गया, वो अलग हो गया वायु के कारण, वायु से वो जो है छिन्न हो गया, वो जिस मेघ से वो अलग हुआ उससे वो वायु के कारण दूर हो गया, और जो दूसरा बादल है उसके साथ वो मिल नहीं पाया, पूर्व मेघ से वो अलग हो गया और उत्तर मेघ के साथ वो जुड़ नहीं पाया। तो जैसे वो जो है बादल का जो खंड है वो वायु के द्वारा छिन्न भिन्न हो जाता है, यदि पूर्व या उत्तर मेघ के साथ मिल जाता तो वो अक्षुण हो जाता, किंतु छोटा होने से वायु की मार से वो जो है समाप्त हो जाता है, पूर्व मेघ से अलग हो गया, उत्तर मेघ को वो मिल नहीं पाया, वायु के द्वारा वो नष्ट कर दिया जाता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है। जैसे ये अभ्रम नष्ट हो जाता है पूर्व या उत्तर मेघ के साथ नहीं मिलने के कारण, अर्जुन कहते हैं कि भगवान ठीक इसी प्रकार से ये जो योग भ्रष्ट है वो इधर मोक्ष मार्ग जो ज्ञान मार्ग है उससे तो भ्रष्ट हो गया, और इधर कर्म मार्ग जो है वो तो उन्होंने चित्त शुद्धि के अभिप्राय से किया था, लोकांतर की प्राप्ति से किया नहीं था, इसलिए कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों से भ्रष्ट हो गया है। कर्म मार्ग तो पहले ही त्याग दिया लोकांतर की इच्छा से, और ज्ञान मार्ग की ओर आगे बढ़ा, उसको उन्होंने प्राप्त नहीं कर पाया, अल्प आयु के कारण शरीर छूट गया। तो वो जैसे जो अभ्रम का जो अलग हुआ टुकड़ा जैसे वायु के द्वारा समाप्त कर दिया गया, ऐसे ही जो है ये उभय विभ्रष्ट जो है योग भ्रष्ट भी क्या वो नश्यति न वा, छिन्न अभ्रम की भांति छिन्न हुआ जो बादल का टुकड़ा है वो जैसे समाप्त हो गया वायु के द्वारा। तो ये जो है कर्म मार्ग से पहले ही उन्होंने विच्छेद कर लिया। कर्म मार्ग तो उन्होंने संन्यास से उस समय त्याग दिया, और उत्तर जो है ज्ञान मार्ग, दूसरा जो जैसे उत्तर मार्ग ज्ञान मार्ग, उस ज्ञान मार्ग को तो बीच में अंतराल में ही उन्होंने जो है उसका छूट गया, उसको प्राप्त नहीं कर पाया परम आयु अल्प होने के कारण। तो जैसे वो बादल की जो छिन्न अभ्रम को जैसे वायु समाप्त कर देता है, वैसे ये नश्यति न वा, यानी उसको कर्म का फल या ज्ञान का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अर्जुन का पूछना है। कर्म फल और ज्ञान फल प्राप्त करने के लिए योग्य है कि नहीं, उनको कर्म का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ज्ञान हुआ नहीं है फिर भी ज्ञान का फल उसको मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मोक्ष नहीं मिला ज्ञान नहीं हुआ तो फिर वो कर्म का फल उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा भगवान, या वो छिन्न अभ्रम की भांति वो नष्ट तो नहीं हो जाएगा। ये अर्जुन का साभिलाष प्रश्न है, अभिलाषा सहित प्रश्न को व्यक्त करने के लिए अर्जुन ने कच्चित शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए ये जो है अर्जुन का प्रश्न है। अब अर्जुन जो है तृतीय श्लोक में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, जैसे मैंने इस दो श्लोक में मैंने अपना संशय का जो स्वरूप मैंने आपके सामने रखा, वो जो है संशय आप उसका छेदन करने के लिए समर्थ है। ये बात जो है भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन 39वें श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं संशय का छेदन की, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम ओम।